ओम शांति। कल जब हम हैदराबाद से राहुल भाई के साथ इधर आ रहे थे तो अचानक बीच रास्ते में बारिश होने लगी और हमने एक गीत बजाया था जो कि कन्नड़ गीत है। हमें कन्नड़ तो नहीं आती है परंतु वो गीत हमें बहुत प्रिय है क्योंकि जब पहली बार उस गीत को हमने सुना था, क्योंकि उसका अर्थ हम जानते हैं परंतु कन्नड़ में लिखा कुवंपु ने लिखा हुआ वो गीत एक्चुअली अनुवादित गीत है और उस गीत में जो भाव प्रकट हुए हैं और जैसे हम कह रहे थे एक बार जब हमने पहली बार इस गीत को सुना था, अर्थ कन्नड़ का एक भी शब्द हमें पता नहीं था परंतु जैसे हम संपूर्ण अशरीरी अवस्था में स्थित हो गए थे और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी, ऐसा वो एक गीत है। वो गीत किसने लिखा और गीत का अर्थ क्या है आप शायद क्योंकि आपकी ही भाषा में है, परंतु राहुल भाई कह रहे थे ये बहुत ही कठिन भाषा है कन्नड़ में भी समझ में नहीं आती है, ऐसी थोड़ी ओरिजिनल कन्नड़ जिसको कहते हैं ऐसी भाषा है, परंतु हमारा हम ऐसा समझते हैं या सभी का ऐसा मानना है कि जहां प्रेम की बातें होती है या परमात्मा प्रेम की बातें होती है या जहां भावनाओं की बातें होती है वहां भाषा गौण हो जाती है। किस भाषा में वो लिखा गया है वो भाषा वो शब्द एक तरफ रह जाते हैं परंतु उसमें जो भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो गीत हमको इंग्लिश में पता है और उसका अर्थ क्या है वो भी पता है, तो सबसे पहले अभी हम उस गीत से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। वैसे गीत बहुत लंबा है, 13 छंद है, परंतु हम उसके कुछ 3-4 मिनट सुनेंगे। आवाज
Thank you.
हमने सुना था एक बहुत बड़ी सभा में जहां पर ब्रह्मचारी और सन्यासी एकत्रित हुए थे। उस आश्रम में गीत लिखा है स्वामी विवेकानंद का, जब वो विदेश में थे अमेरिका में 1895 न्यूयॉर्क थाउजेंड आइलैंड पार्क। एक दिन अचानक वहां पर वो कुछ प्रवचन श्रृंखला कर रहे थे कुछ विशिष्ट लोगों की, क्योंकि जो लेक्चर्स से थक गए थे। तो उस अरण्य में एक जगह पर कुछ विशिष्ट लोगों से वो वार्तालाप करते थे रोज, और एक दिन अचानक जंगल में चले गए और वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे समाधि का अनुभव किया और फिर कमरे में आकर यह गीत लिखा इंग्लिश में, द सॉन्ग ऑफ द सन्यासिन। उसी का ही राष्ट्रकवि कुवंपू ने कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया है और उसी का यह गीत था। तो ये जब हमने गीत लिखा था उसमें ऐसी वैराग की बातें हैं। सन्यासी को कह रहे हैं कि अपने सर्व बंधनों को तोड़ दे। वह पुरुष जो अपनी पत्नी को अपनी मानता है वो संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे ऐसे कुछ वाक्य उसमें हैं। तो हे सन्यासिन, कट थाय फेटर्स, कट थाय चेन्स एंड से ओम तत्सत। सत्य एक ही है और ईश्वर एक ही है। तो आज जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं वो है वैराग। अच्छा शब्द है कि कठोर है? कितना अच्छा है, मुंह में पानी लाए ऐसा है, माउथ वाटरिंग वर्ड है कि वैराग सुनते ही कुछ दृश्य सामने आते हैं, कोई उल्टा लटका हुआ है, शरीर को सता रहा है, कोई कांटों पर लेटा हुआ है, कोई जंगलों में भागा हुआ है, कोई हिमालय की कंदराओं में बैठकर तपस्या करता हुआ है, कौन से दृश्य आते हैं? वैराग क्या है, वैराग का अर्थ क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पुरुषार्थ का प्रभात, पुरुषार्थ का की सुबह वैराग से होती है। अंधकारमय रात्रि जो है, जब तक वो समाप्त न हो जाए, जब तक ये प्रभात न आए, जब तक ये सुबह न आए, यह स्वर्णिम सुबह, दिन का आरंभ नहीं हो सकता। और यदि हम सभी तीव्र पुरुषार्थी है या बनने के मार्ग पर है, तो हमें भी अपने जीवन में वैराग लाना होगा। तीन तरह के वैराग की चर्चा होती है, मंद वैराग्य, मध्यम वैराग्य, तीव्र वैराग्य, या कहो तीव्रतर। मंद वैराग्य, संसार विनाश होने वाला है, होने दो, पता नहीं कब होगा, कब से चल रहा है ये, तो होने वाला है, होने दो। दूसरा थोड़ा ज्यादा मध्यम, मध्यम वैराग्य। मध्यम वैराग्य में भी दो प्रकार, एक होता है कारणवाचक, कारण सूचक वैराग्य, और दूसरा होता है विवेक युक्त वैराग्य। कारण अर्थात घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो संसार से वैराग, घर में कोई बीमार पड़ जाए या हम खुद ही बीमार पड़ जाए, या कोई ऐसी घटना आ जाए कि धोखा मिल जाए किसी से, जिस पर बहुत विश्वास किया था, उसी से एक दिन धोखा हो जाए, बहुत जिसको सारे जीवन के राज बताए थे, एक दिन उसी ने हमको चूरा खोक दिया, ऐसी घटनाएं आती है तो तुरंत वैराग आ जाता है। एक इस तरह का वैराग। दूसरा वैराग है विवेक जन्य वैराग्य। मध्यम में भी विवेक जन्य, विवेक पर आधारित वैराग्य, ज्ञान पर आधारित है, समझ पर आधारित वैराग्य। ऐसा वैराग्य लंबे समय तक चलता है। और तीसरा जो है तीव्र वैराग्य, तीव्रतर वैराग्य, ऐसी शास्त्रों में चर्चा आती है। बाबा दो प्रकार के वैराग्य की चर्चा करते हैं, एक है शमशानी वैराग्य, जिसे शास्त्र कहते हैं मरकट वैराग्य। मरकट अर्थात बंदर, बंदर होता है ना, घड़े में चने हैं बहुत सारे, तो वो चनों के लालच में घड़े में हाथ अपना डालता है और उसमें हाथ उसका फंस जाता है, फिर वहां से मालिक आता है, उसकी बहुत पिटाई करता है, और जब उसको मार पड़ती रहती है तो सोचता है अगली बार कभी भी हाथ नहीं डालूंगा, एकदम संसार से वैराग। और जैसे फिर छूटता है और जाता है, अगली बार फिर देखता है घड़े में चने हैं, वैराग तो आया था परंतु फिर हाथ डालता है, क्षणिक मरकट वैराग्य। उसी को कहते हैं शमशानी वैराग्य। शमशानी वैराग्य अर्थात शमशान में सभी गए हैं ना, एक बार कई बार गए हैं, क्या होता है वहां जाते ही, पहले तो क्या दिखाई देता है वो बताओ, शमशान में गए क्या दिखाई दे रहा है सामने, शव पड़ा है और क्या हो रहा है, अग्नि की लपटे, चिता जल रही है, और मन में कौन से विचार आते हैं, एक दिन हम भी चले जाएंगे, और क्या क्या विचार आते हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, और पीछे से क्या होता है शमशान में देखते हुए, वहां खड़े हैं और देख रहे हैं, मन में संकल्प चल रहे हैं, साथ में कोई नहीं जाने वाला, अकेले आए थे अकेले जाना है। और ये बहुत अनमोल विचार है कि खो जाते हैं, इसके लिए इस पर चर्चा जरूरी है। और क्या विचार आते हैं? कहीं भी कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है और खाली हाथ, वो हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, कौन से विचार आते हैं? हम भी एक दिन जाने वाले हैं, सब एक दिन जाने वाले हैं, सब कुछ विनाश होने वाला है, कुछ भी बचने वाला नहीं है, और शरीर विनाशी है, और क्या क्या, आत्मा अमर है अजर है, आत्मा के विषय में, हाँ आत्मा के भी संकल्प आते हैं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और अच्छा काम करना है, अब तक बहुत पाप कर लिए, मेरा भी ये हाल होने वाला है, तो अभी पापों की, पाप से भरी ये जिंदगी, और क्या विचार आते हैं? आने चाहिए उस आत्मा के प्रति क्या विचार आते हैं? वो आत्मा है जिसने बहुत तंग किया आपको, अच्छा हो गया गया, और चलो गया तो गया, पर हम भी तो कौन है, पूर्वज है, ब्राह्मण आत्मा है ना, तो माफ भी कर दिया, अभी क्या शत्रुता रखना, बेचारा गया। और क्या विचार आते हैं? यदि हमने उसको बहुत सताया हो तो, यदि हम ही उसकी मृत्यु के कारण हो तो, अब क्या विचार आएंगे? क्षमा, क्षमा कर दो, और उसकी अच्छाई याद आएगी, उसकी अच्छाई याद आएगी। महात्मा बुद्ध के पास जब भी कोई व्यक्ति आता था संन्यास ग्रहण करने, तो वो कहते थे 3 मास शमशान में जाओ, पहले वहीं रहना है, सुबह से लेकर शाम तक चिताओं को जलता हुआ देखना, बहुत अच्छा एक्टिविटी है ये, दिस इज स्पिरिचुअल एक्टिविटी। कैसे बचा पाओगे स्वयं को वैराग से? देखना आंखों के सामने चिताएं जल रही है, आग की लपटें उठ रही है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, कहां है उस व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा, सब खाक में, कुछ भी नहीं रहा है। वैराग का भाव जन्म लेता है जब देखते हैं चिताओं को, वहां के उस वातावरण को, उस मौन को, वो धुआं जो आकाश में उड़ता है उस समय, एकदम संसार के प्रति, वहां बैठकर शायद ही कोई पुरुष होगा या स्त्री हो जिनके मन में कामनाएं जागती होगी, विकार के भाव जागते होंगे, उस वातावरण में नहीं जाग सकते, चाहे कितना भी भोगी विलासी व्यक्ति हो, परंतु यदि उसका ही कोई स्वजन हो, आप्तजन, और वो वहां खड़ा है, और वो चिताए, वो आगे, वो आग की लपटें उठ रही है, उस समय के लिए वैराग आ जाता है, उस समय के लिए स्वतः ही आत्माभिमान स्थिति हो जाती है, वो देहभान की अवस्था नहीं रहती है, बिना किसी प्रयास के आत्माभिमानी स्थिति आ जाती है। परंतु हमने नाम दिया है शमशानी वैराग, फिर व्यक्ति घर जाता है, घर परिवार प्रपंच संसार, वो देखते ही इधर का भूल जाता है, फिर सोचता है अभी ये गए, हम थोड़ी गए, हमको अभी टाइम है, वो यक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे पांडवों से, 4 तो मर गए थे, 1 बचा था, युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, अगर तुम बता दो तो इनको जिंदा कर दूंगा, वो प्रश्न था संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, उत्तर यही दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हर व्यक्ति मर रहा है पर सोचता है कि ये मेरे साथ नहीं होगा, काल के मुंह में है हम, एवरी बर्थडे सेलिब्रेशन मतलब और अंदर, और उसको हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट, परंतु ये अगर मुंह है तो हमारा जीवन हम अंदर अंदर जा रहे हैं, तो क्षणिक वैराग्य ट्रांजिटरी है, डिस्पैशन डिसइंटरेस्ट कहो, वो ऐसा वैराग्य ज्यादा समय नहीं चलता। तो हमें चाहिए मंद नहीं, मध्यम नहीं, तीव्र वैराग्य, तीव्रतर वैराग्य। और दूसरा प्रकार, एक तो शमशानी या मरकट और दूसरा है शाश्वत वैराग्य, निरंतर वह वैराग्य अवस्था, जो अवस्था उस शमशान घाट में खड़ी रह के होती है, उस मरघट पर खड़ी रह के, वही अवस्था निरंतर ही रहे, तो ये संसार के प्रति हम लिप्त नहीं होंगे। अगर परंतु हां, इसका भी ऐसा नहीं कि वैराग शब्द नया है, लोगों ने इसको भी धारण करने के प्रयत्न किया है, परंतु कुछ गड़बड़ हो गई। उन्होंने त्याग का मार्ग चुना, एक है भोग और दूसरा है त्याग। त्याग अर्थात भागो दूर, उसको छोड़ दो, पर उस त्याग से भी फल प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि वो शीर्षासन हो गया। एक है गृहस्थी, एक है सन्यासी। गृहस्थी भोग में है, सन्यासी दूर है, परंतु चिंतन दोनों ही बीच का ही कर रहे हैं उस व्यक्ति का, अगर वो स्त्री है या वस्तु है कोई भी। एक डूबा हुआ है, एक भागा हुआ है, इसके लिए वो वैराग भी फलित नहीं हुआ है। इस त्रिकोण का एक ऊपर का कोण है, वो कौन सा? एक है भोग, एक है त्याग, छोड़ो, एक तीसरा भी है ऊपर, जिसे कहते हैं वीतराग, जिसे कहते हैं वीतराग, वीत राग, और ज्ञान की भाषा में उसे बेहद का वैराग कहते हैं। वो वैराग नहीं है, बेहद का वैराग है। ऐसे वीतरागी योगी हमें बनना है। वो वीतरागता क्या है? वो भागना नहीं है चीजों से, वो दमन नहीं है, सप्रेशन नहीं है, रिप्रेशन नहीं है, वो नफरत नहीं करना है चीजों से, वो स्वतः ही ऐसी प्रेममयी अवस्था है कि नीचे का स्वतः ही छूट गया। वैराग एक्चुअली आनंद की अवस्था है। वैरागी मतलब वो नहीं जिसने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। छोड़ तो दिया है, पर मन में चिंतन वही चल रहा है, वो वैराग दबाया हुआ नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो दबाएंगे फिर वो स्वप्न में आएगा रात में। जो दबाएंगे उसको अवसर मिलते ही बाहर निकलेगी वो इच्छा। इसके लिए दबाने का मार्ग नहीं है, उसको समझ लेना। जैसे कि यदि आप यहां से घर जा रहे हो और देखा रास्ते में बहुत अच्छी जलेबी बन रही है, किस कौन कौन ऐसे हैं जिन्हें वो खाने की इच्छा होती है, और लगता है कोई देख नहीं रहा, खा लेता हूं, कोई भी के आसपास नहीं है, क्यों ऐसा होता है? नहीं होता ना। अगर कोई आके हमारी बहुत ही तारीफ करने लगे, आप कितने बड़े त्यागी हो, आपने ये बाहर का खाना ही छोड़ दिया, तो हमें कुछ लगता है? कुछ नहीं, ये तो एकदम सहज हो गया। क्यों नहीं लगता ना? या हम कहते फिरते सुबह से, हम बाहर का नहीं खाते, हम बाहर का नहीं खाते, जो जो पकड़ पकड़ के सुनाते हैं किसी को कि हम नहीं खाते, बिल्कुल तुम खाते हो पर हम नहीं खाते। क्यों क्यों, क्या हो गया? समझ लिया उस चीज को, रिजेक्ट कर दिया एकदम, अभी कोई संकल्प ही नहीं है उसका, संपूर्ण समझ आ गई है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण मुक्ति है। यदि हम किसी संस्कार से और विकार से और विकल्प से मुक्त नहीं हो पा रहे, शायद हम उसे जानते ही नहीं है। उस राग का ज्ञान ही हमें नहीं है, इसलिए ये देह आकर्षित कर रहा है, इसलिए ये क्रोध नहीं छूट रहा है। यदि हम क्रोध को पूर्ण रूप से देख ले आमने सामने, तो रहेगा नहीं, क्योंकि हमारा निज स्वरूप वो है ही नहीं, ये हमारा अज्ञान है विकारों के बारे में। और एक दूसरी बात, यदि छोटा सा बच्चा है उसे दो लड्डू दिए जाए, एक छोटा लड्डू एक बड़ा लड्डू, कौन सा लेगा? बड़ा, तो उसने छोटे का त्याग कर दिया? नहीं, उसे मिल गया बड़ा। हमें कौन मिला है? सबसे बड़ा लड्डू कौन सा है दुनिया का? बाबा, तेरे प्यार के आगे वो ताज फीका, वो तख्त फीका गीत है। हम हैं तुम्हारे, तुम है हमारे। तो ये वास्तविक वैराग है कि जिससे ऐसा कुछ मिल जाए कि निचला सब कुछ छूट गया। जैसे वो पत्ते होते हैं सूखे, अपने आप गिर जाते हैं झाड़ से, वो झाड़ को भी नहीं पता वो कब गिरे और पत्तों को भी नहीं पता हम कब गिरे। ऐसे विकार छूट जाए, जैसे ये बाहर की चीज का उदाहरण दिया, वैसे ही काम, वैसे ही क्रोध, वैसे ही लोभ, वैसे ही अहंकार, वैसे ही ईर्ष्या, द्वेष, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, घृणा, निगेटिव भावना अंदर जो है आत्मा में, वो अगर उनके प्रति भी हमें कुछ ऐसा मिल जाए तो ये नीचे का सब कुछ छूट जाएगा। शायद वो मिल नहीं रहा है, ये हमारा उतना प्रयत्न नहीं है, इसके लिए नीचे के लेवल पर हमारी लड़ाई चल रही है। सारा जीवन संघर्ष, दिवस रात्र महा युद्धा का प्रसंग, अंतर बाह्य मन अनिजक, दिन रात ही युद्ध ही युद्ध है। तो वैराग अर्थात उस वीतराग अवस्था में स्थित हो जाना। कभी मुरली में बाबा ने कहा है, प्रभु प्यार में खो जाना ही वैराग है, बेहद का वैराग है। इतना उसकी बातों में, उसकी यादों में खो गए कि संसार स्वतः ही छूट गया है। फिर वो जो संगीत निकलेगा जीवन से वो इतना मधुर होगा। मीरा का गायन है शास्त्रों में। मीरा किसी म्यूजिक क्लास या सिंगिंग क्लास में गई थी क्या, या डांसिंग क्लास में? कैसी उसकी अवस्था थी? उसकी जो अवस्था थी बड़े बड़े पहुंचे हुए ऋषियों की और साधुओं की भी नहीं थी, पर लोग उसे वहां वाले तो समझ नहीं पाए। वो इतनी खो चुकी थी उसमें उसके उस रूहानी साजन में कि संसार छूट गया। भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ उसको अच्छा नहीं लगता है यहाँ का, इतनी मगन अवस्था। ये वास्तव में वैराग है, इसे वैराग कहते हैं। परमात्मा प्रेम ही स्वतः वैराग दिलाता है, और बिना वैराग के, इन्वर्टेड कॉमा अव्यक्त महावाक्य, बिना बेहद के वैराग के तुम सकाश देने की सेवा नहीं कर सकते, या फिर कोई भी सेवा नहीं कर सकते। ये सेवा करोगे वो सेवा नहीं होगी, कि उसमें आसक्तियां होगी, नाम की कामना होगी, मेरा नाम हो जाए, ये भाव होगा। तो मंद वैराग नहीं, मध्यम वैराग नहीं, तीव्र और तीव्रतर वैराग्य, धधकता हुआ वैराग। यहां का कुछ नहीं चाहिए, सारा देख लिया समझ लिया, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति से सुख नहीं मिल सकता, निरपवाद सत्य है ये। इस संसार के किसी भी व्यक्ति से हमें सुख नहीं मिल सकता। यदि हम ये सोचे कि ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, ये तो वैसा ही है कि दो व्यक्ति एक दूसरे का सहारा लेते हैं राह दिखाने के लिए, परंतु दोनों ही अंधे हैं। एक भिखारी दूसरे भिखारी के साथ मिलता है, इसलिए संपन्न होने के लिए। क्या ये हो सकता है? समाज इसे विवाह कहता है। कोई किसी को तृप्त नहीं कर सकता जो स्वयं ही अतृप्त है। कैसे दूसरों को भर सकता है, तृप्त कर सकता है। इन्फिनिट कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय फाइनाइट। आत्मा अनंत है, कुछ भी अंत वाली चीज उसको भर नहीं सकती कभी भी। उसकी कामना अनंत की है, अनंत खोज की है, उसे असीम चाहिए कुछ, तो ही तृप्ति का भाव आता है। नहीं तो थोड़ा पा लिया और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी मुक्त नहीं होता है उस और से, उस वंस मोर की कामना से। मरना सन्न हो जाता है फिर भी उसी भाव से मरता है। इसलिए अध्यात्म अर्थात धधकता हुआ वैराग का पथ है ये, अग्नि पथ है ये, या विजय पथ अग्नि पथ है। तो चर्चा का विषय है कि वैराग को कैसे लाए आप जीवन में, क्या करेंगे। एक तो मार्ग बता दिया, कहां जाना, वीकली विजिट, बीच बीच में जाते रहना चाहे कोई भी हो, वो दृश्य बहुत अच्छा है। और कौन से ऐसे हॉट स्पॉट से जहां जाकर वैराग आते हैं, एक तो बता दिया, दूसरा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाकर देखो मरीजों की अवस्था कैसे, तड़प रहे, बिलग रहे, रो रहे हैं, क्या अवस्था है वहां उनकी। एक बीच बीच में चक्कर लगा के आना, सरकारी अस्पताल होगा ना यहाँ, बड़ा सरकारी अस्पताल, तो वहां पर कैसे गरीब लोग लड़ रहे बीमारी से। और कौन सी जगह है जहां जाके आना, स्लम एरियाज, गरीब कैसे जी रहे हैं उस झुग्गी झोपड़ी में, उस गरीबी में, उस विपन्नता में, उस पावर्टी में, एब्जेक्ट पावर्टी, उनको जाकर देखना, वही जीवन का सत्य रूप है। जो टीवी पे दिख रहा है वो नहीं, जो फिल्मों में दिखाई दे रहा है वो नहीं, वो झूठ है, असत्य है, मिथ्या है। सत्य ये है, फेस टू फेस विथ रियलिटी। और कहां जाएंगे, चौथा भीख मांगते हुए, चलो ये भी एक ग्रुप है। लोगों की अवस्था देखो कैसी है, भीख मांग रहे। एक फकीर था, वो इतनी खराब हालत थी उसकी, भीख मांगता था, उम्र हो गई थी, मवाद पस निकलता था शरीर से, फोड़ों से कपड़े फटे हुए थे, खाने को कुछ नहीं था। एक व्यक्ति उसे रोज दिखता था और सोचता था कैसी जीवेशना है इसको, क्यों ये जी रहा है ये व्यक्ति, और किस लिए जी रहा है, कितनी आसक्ति है जीवन की इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति में, कि इतना खराब अवस्था होते हुए भी रोज आ जाता है भीख मांगने, इसको तो वैसे ही मर जाना चाहिए, ऐसे शुभ विचार उसके मन में आते हैं। और एक दिन उस भिखारी को पूछ बैठता है कि क्या तुम इस जीवन से खुश हो, क्यों जी रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता जीवन का अंत कर दूं। वो कहता है मैं अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए जी रहा हूं कि तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है, यही एक दिन, यही यही है जीवन का सत्य, ऐसा ही बुढ़ापा, ऐसे ही रोग, ऐसी ही बीमारियां जो शरीर से दुर्गंध निकलेगी, रोज लोग दूर भागेंगे। हमारे पास एक पेशेंट थे, ऐसा कैंसर हो गया कि वहां से फॉल स्मेल इतनी खराब कि उनको आइसोलेशन वार्ड में रखते थे, फंगेटिंग मास विथ मेटास्टेसिस सारे शरीर में फैला हुआ। और कौन सी जगह है जहां जाए तो वैराग आ जाए, अनाथालय। देखो उनकी हालत कैसी है, कैसे जी रहे वो लोग, कोई नहीं है देखभाल करने वाला। और वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में कई कई वृद्धाश्रम में ऐसे लोग हैं कि जिनके बेटे उसी शहर में रहते हैं, उनको कहो कि जाओ घर पे, परंतु जाना नहीं चाहते। बेटा तो ले लेता है, तैयार भी है, परंतु वो जाना नहीं चाहते क्योंकि रोज का अपमान कौन सहन करेगा। जीवन इतना समान अस्मिता से गुजारा है और अभी रोज अपमान, स्टडी करो उन लोगों को, स्टडी ऑफ लाइफ, इसे कहते हैं स्टडी। ये है विवेक का मार्ग, वो दबाया हुआ नहीं, ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, हम वो देखेंगे नहीं, ये नहीं देखना है। जो नहीं देखना है वही ज्यादा देखने की इच्छा करता है। फिर मनुष्य का स्वभाव है, जो उसको कहो कि नहीं तो वही चाहिए उसे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं व्हाइट बेयर फिनोमिनन, सफेद भालू। विदेश में एक प्रयोग किया गया था जिसमें लोगों को बिठाया गया और उनको कहा कि अगले आधे घंटे तक सफेद भालू के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। अगले घंटा उन्होंने कहा सफेद, हमने तो काला भी नहीं देखा आज तक, पर उसके बारे में सोचना नहीं है। वो एग्जामिनर चला गया, इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था आज तक भालू के बारे में, नहीं तो सफेद तो व्हाइट बेयर तो बिल्कुल नहीं, परंतु वो आधा घंटा भालू ही भालू घूम रहा था बस। जिस चीज के लिए कहो नहीं मन कहता है वो क्या है और क्या है। ओनली फॉर लेडीज वाली मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मेल्स ही पढ़ते रह जाता, यही स्वभाव है। इसके लिए हमें ये दमन वाली फिलॉसफी नहीं चाहिए, हमें देखना है चीजों को फेस टू फेस क्या है। और कहां जाएंगे, और कोई जगह, मंदिर मस्जिद वहां जाके क्या करेंगे, वैराग कैसा आएगा, हो सकता है वहां पर भी। जो मेहनत करते हैं, मजदूर है, कितना कष्ट करते हैं परंतु मिलता कुछ भी नहीं, कितना कम मिलता है। और जैन, अच्छा साधु सन्यासी, इतना वैरागी जो है, परंतु उनको भी भगवान नहीं मिला। यह भी एक सोचने का भाव है। हम कभी कभी सोचते हैं ये जो जैन लोग हैं वो अगर ब्रह्मा कुमारी में आ गए ना, हम सबको पीछे छोड़ के आगे चले जाएंगे। उनमें जो वैराग है हमसे कई गुना ज्यादा है। तो गीता में एक श्लोक है, उसमें इस प्रश्न का उत्तर है, वैराग के प्रश्न का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। वैराग लाने की प्रक्रिया क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसका दर्शन करना। दुख जो है, दोष दृष्टि निर्माण करना। संसार के जो सुख है वो वास्तव में सुख नहीं है, घूंघट ओढ़े है, अंदर दुख है, ओनली स्क्रीन सेवर। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, स्वजन सजनों की मृत्यु। देखो संसार में, हमें याद है अभी अभी एक हफ्ते पहले ही हॉस्पिटल में लोग घूमने आते हैं, माउंट आबू में टूरिस्ट प्लेस है, शादी करके घूमने आते हैं, तो फोटो निकालते निकालते कहां गुरु शिखर में या कहीं, वो जो महिला थी वो गिर गई नीचे और उसको तुरंत लेके आए, आए तो ब्रॉड डेड, मर चुकी थी। तो वो उसका जो पति था, 25 साल का होगा, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि अनकंट्रोलेबल, कोई उसकी हद ही नहीं, कैसे उसको संभाले रोके। स्वजनों की मृत्यु, जितनी ज्यादा आसक्ति उसी अनुपात में दुख। द डीपर द अटैचमेंट द डीपर द सॉरो द सफरिंग। ये मेरे का भाव था, परंतु वहां और भी है एक चीज, आसक्ति तो है ही परंतु वहां पर वासनाएं भी है जिसकी अब अपूर्ति हो गई। वास्तव में ये जो प्रेम है झूठा है, वो सत्य प्रेम नहीं है। ट्रू लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी, ऐसा कहते हैं। सत्य प्रेम जो, उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं। हमें याद है एक दूसरा भी पेशेंट था जिसकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, वो इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, हमको लग रहा था कितना इसका प्यार है इसकी पत्नी के साथ, ऊपर से तो ऐसा ही लग रहा था, इतना मतलब उसको ये हो गया था। और वही व्यक्ति एक महीने के बाद हमारी ओपीडी में इनविटेशन कार्ड, मैरिज। ये है संसार की वास्तविकता। स्टडी करना इस संसार को साक्षी होकर, क्या हो रहा है यहां, तो स्वतः ही वैराग आएगा। जन्म मृत्यु जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, वार्धक्य, ओल्ड एज, चल नहीं सकना, उठ नहीं सकना, देखना नहीं, एक कोई तो चाहिए, लाठी चाहिए, सुनाई नहीं देता, दांत गिर गए हैं, कोई ठीक से बात नहीं करता, क्या ऐसा कोई है कि जो कहे कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा? डर भी लगता है थोड़ा बूढ़ा होने का, जब ट्वेंटीज में रहते हैं ऐसा लगता है ट्वेंटीज में ही रहना चाहिए, थर्टीज जब चालू होती है तो उससे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, फोर्टीज जब चालू होता है और भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है पीछे चले जाओ, डर भी है कि एज बढ़ रही है, एक अज्ञात सा भय होता है। बुढ़ापे की भी स्टडी करनी, और फिर है व्याधि, जैसे कहा हॉस्पिटल में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषाणु दर्शनम, दर्शन करो इनका। व्याधि आने के बाद क्या हाल होता है? यदि हम बीमार पड़ गए और कोई हमारी सेवा में नहीं है, यदि हम बीमार है कोई देखने नहीं आता है, कोई पूछता नहीं, पैसे नहीं है, और ये सब होगा, ये सब होगा। इसके लिए वैराग, ये समय है स्वयं को शक्तियों से, बाबा के प्यार से, योग से, तपस्या से स्वयं को भरने का। अगर ये कार्य नहीं किया तो समय फिर हमारा टीचर बनेगा एक दिन, समय हमको सिखाएगा। अभी हम अगर नहीं सीखे तो समय जो है सबसे बड़ा टीचर है, वो छड़ी लेकर सिखाएगा। प्राकृतिक आपदा है और जीवन अनित्य है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम यहां बैठ के आज ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, शाम को क्या होगा हमें पता नहीं, कल सुबह क्या होगा पता नहीं। मुंबई में जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो ये डर रहता है पता नहीं शाम में वापस आएंगे कि नहीं, कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट कुछ भी हो सकता है, आतंकी हमला, ट्रेन में हमला, कुछ भी हो सकता है। ऐसा अनित्य यह जीवन है। अनसर्टिनिटीज आर द ओनली सर्टन थिंग्स ऑफ लाइफ, इज द ओनली सर्टन थिंग ऑफ लाइफ, ऐसा कहते हैं। तो मन में यह भाव जो मुरलियों में रोज रोज आता है, वैसे बार बार सुन के वो पूरा उसका असर खत्म हो गया है, इस दुनिया का विनाश हो रहा है, जो होगा विनाश गारंटी है, जो तुम आंखों से देखते हो कुछ भी नहीं रहेगा, बाप आए हैं ले जाने के लिए, इधर से सुना और इधर से गया, ऐसे हो गया है। तो स्टडी शायद, और स्टडी के लिए थोड़ा रुकना होगा, जो दौड़ है हमारी भाग भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, स्टॉप, टर्न बैक एंड थिंक, मुझे करना क्या है, किस लिए आए थे और क्या कर रहे। यदि इस ज्ञान मार्ग में भी आ गए, ब्राह्मण बन गए, चल रहे हैं, और फिर से वही सारी आसक्तियां, वही सारे राग, वही व्यक्ति और वस्तुएं इसमें समा गई, तो लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। इसके लिए इस पुरुषार्थ के मार्ग में जो प्रभात है वो है वैराग। वैराग की बहुत कम चर्चा है आजकल ब्राह्मण परिवार में, करते कोई चर्चा? बहुत कम, नहीं करते। विनाश की बात सुन सुन के तो विनाश का डर खत्म हो गया, या विनाश की अभी कोई चर्चा भी नहीं करता। एक समय था यज्ञ में जब विनाश की बहुत चर्चा होती थी, अभी वो चर्चा भी नहीं है, अभी सेवाओं की चर्चा है बस। परंतु इन सेवाओं के जंगल में वैराग खोना जाए, जिस चीज के लिए आए थे वही खोना जाए। स्टडी लाइफ जैसी वो है वैसा ही। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।